दोपहर की धूप अब हवेली के खुले आंगन में फैल चुकी थी। बाहर आम के पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा के साथ झूम रही थीं, लेकिन कमरे के भीतर शांत वातावरण बना हुआ था। एसी की ठंडी हवा चल रही थी, हल्के रंग के पर्दे धीमे धीमे हिल रहे थे। श्यामली करवट लेकर लेटी थी। दवा का असर होने लगा था, लेकिन बुखार पूरी तरह उतरा नहीं था। उसके चेहरे की लालिमा अभी भी बनी हुई थी। विश्वनाथ खिड़की के पास खड़ा फोन पर ऑफिस के जरूरी निर्देश दे रहा था। आज की सारी फाइलें शाम तक मेरे ईमेल पर भेज देना, और जो मीटिंग है उसे ऑनलाइन कर दो, मैं हवेली से ही जुड़ जाऊंगा। दूसरी तरफ से जवाब आने पर उसने संक्षेप में ठीक है कहा और फोन रख दिया। फोन रखते ही उसकी नज़र फिर श्यामली पर चली गई। वो अब भी उनींदी सी आंखें बंद किए लेटी थी। वो धीरे से उसके पास आया। कैसा लग रहा है अब? श्यामली ने आंखें खोली। पहले से थोड़ा बेहतर है, बस शरीर बहुत टूट रहा है। विश्वनाथ ने बिना कुछ कहे फिर से उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं गया। श्यामली हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप बार बार तापमान हाथ से क्यों देख रहे हैं, थर्मामीटर भी तो है। विश्वनाथ भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। आदत है, माँ जब बीमार पड़ती थीं तब दादी ऐसे ही देखती थीं, शायद वही आदत रह गई। श्यामली पहली बार उसके चेहरे पर ऐसी सहज मुस्कान देख रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रामो ट्रे लेकर अंदर आया। मालिक आपने जो कहा था, खिचड़ी और दही, यहीं रख दो। रामो ट्रे रखकर चला गया। विश्वनाथ ने ढक्कन हटाया। हल्की घी की खुशबू कमरे में फैल गई। उसने प्लेट में थोड़ी सी खिचड़ी निकाली और चम्मच हाथ में लिया। श्यामली उठने लगी। मैं खुद खा लूंगी। नहीं, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है मेरी, मैंने कहा ना, अभी आराम करो। उसने तकिया ठीक करते हुए उसे थोड़ा सहारा दिया ताकि वो आराम से बैठ सके। श्यामली उसे देखती रह गई। विश्वनाथ ने चम्मच में थोड़ी सी खिचड़ी लेकर उसकी ओर बढ़ाया। गर्म तो नहीं है? नहीं। फूंक मारकर खाओ। वो खुद ही हल्की सी फूंक मारकर मुस्कुराया। अब ठीक है। श्यामली अनायास हंस पड़ी। आप भी ना? क्या? कुछ नहीं। उसने चुपचाप पहला कौर खा लिया। विश्वनाथ धीरे धीरे उसे खिलाता रहा, हर दो तीन चम्मच बाद पूछ लेता, और चाहिए? पानी? बहुत गर्म तो नहीं? इतनी बारीकी से उसकी देखभाल देखकर श्यामली का मन बार बार भरा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, बस अब और नहीं। विश्वनाथ ने प्लेट रख दी। इतना कम खाओगी तो जल्दी ठीक कैसे होगी? भूख ही नहीं लग रही। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर खाएंगे। उसने दवा निकालकर पानी के साथ उसे दे दी। श्यामली ने बिना किसी बहस के दवा खा ली। कुछ मिनट बाद वो फिर लेट गई। शरीर की थकान अब भी बनी हुई थी। विश्वनाथ कुर्सी खींचकर उसके सिरहाने बैठ गया। सिर दर्द हो रहा है? श्यामली ने धीरे से सिर हिलाया। थोड़ा। विश्वनाथ ने कुछ पल उसे देखा, फिर बहुत धीरे से पूछा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं सिर दबा दूं? श्यामली उसकी ओर देखने लगी। शायद उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आप? हाँ। वो धीरे से मुस्कुराई। ठीक है। विश्वनाथ ने बहुत सावधानी से उसके सिर के नीचे तकिया ठीक किया और उंगलियों से उसके सिर की हल्की मालिश करने लगा। उसकी उंगलियों का स्पर्श बेहद संयमित था, न बहुत तेज न बहुत हल्का, बस इतना कि सिर का भारीपन धीरे धीरे कम होने लगे। कुछ ही मिनटों में श्यामली की आंखें बंद होने लगीं। वो आराम महसूस कर रही थी। कमरे में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बाहर पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक श्यामली ने आंखें बंद रखते हुए कहा, धन्यवाद। विश्वनाथ ने हाथ रोक दिए। किस लिए? इतना ख्याल रखने के लिए। वो कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, बीमार इंसान का ख्याल रखना कोई एहसान नहीं होता। फिर भी? उसने आंखें खोली। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन आप मेरे सिरहाने बैठकर मेरा ध्यान रखेंगे। विश्वनाथ की नज़रें कुछ पल के लिए झुक गईं। शायद मैं पहले जितना समझता था, बातें उतनी आसान नहीं थीं। श्यामली ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसने बात वहीं छोड़ दी। कुछ देर बाद उसने फिर मालिश शुरू कर दी। धीरे धीरे श्यामली का सिर दर्द कम होने लगा। वो अनजाने में थोड़ा सा उसकी ओर खिसक आई। उसका सिर अब तकिए से थोड़ा हटकर विश्वनाथ की हथेली के पास टिक गया था। दोनों को इसका एहसास कुछ क्षण बाद हुआ। श्यामली झिझक कर थोड़ा पीछे हटने लगी। विश्वनाथ ने सहज स्वर में कहा, रहने दो, अगर ऐसे आराम मिल रहा है तो। उसकी आवाज़ में किसी तरह का आग्रह नहीं था, सिर्फ सच्ची चिंता थी। श्यामली के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कमरे का वातावरण पहले से कहीं अधिक सहज हो चुका था। कुछ देर बाद विश्वनाथ ने पास रखी किताब उठाई। नींद नहीं आ रही तो मैं पढ़कर सुनाऊं? श्यामली ने आश्चर्य से पूछा। आप कहानी भी पढ़ते हैं? कभी कभी। तो सुनाइए। विश्वनाथ ने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया। उसकी गंभीर आवाज कमरे में एक अजीब सी शांति भर रही थी। कुछ ही मिनटों में श्यामली की पलकों पर फिर नींद उतर आई। उसकी सांसें अब पहले से कहीं अधिक सामान्य थीं। विश्वनाथ ने किताब बंद की और देखा कि वो सो चुकी है। उसने बहुत सावधानी से उसके माथे पर गिरी एक बालों की लट हटाई, फिर कंबल ठीक करके उसके कंधों तक उड़ा दिया ताकि उसे ठंड न लगे। एक पल के लिए उसकी नजर श्यामली के शांत चेहरे पर ठहर गई। सुबह से पहली बार उसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। वो धीरे से कुर्सी पर वापस बैठ गया, लैपटॉप खोलकर ऑफिस का काम करने लगा। लेकिन हर कुछ मिनट बाद उसकी नजर अनायास ही श्यामली की ओर उठ जाती। अब उसके लिए काम से ज्यादा जरूरी ये था कि जब श्यामली की आंख खुले तो उसे सबसे पहले यह एहसास हो कि वो अकेली नहीं है।